आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेसल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। भक्ति महारानी भक्ति देवी की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। श्री गुरु श्री गुरंग हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णसुधामुपगते धर्मज्ञानादिभिः कलौ नष्ट दृशामेश पुराण अर्कधुना उदित। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। श्रीमद्भागवतम से पाठ दशम स्कंध अध्याय तीन कृष्ण जन्म श्लोक कौन से 15, 16, 17 तीनों श्लोक एक साथ में है। बोर्ड में कौन सा है 15 जथा इमे अविकृता भावा तथा ते विकृतैः सह नानावीर्याः पृथग्भूताः विराजन् जनयन्तीः। प्रथमे अविकृता भावा तथा ते विकृतैः सह नानावीर्याः पृथग्भूता विराजं जनयन्तिः। यथमे अविकृता भावा तथा ते विकृतैः सह नानावीर्याः पृथग्भूता विराजं जनयन्तिः। यथ मे अविकृता भावा तथा ते विकृतैः सह नानावीर्याः पृथग्भूता विराजं जनयन्तिः। माताएं दोनों श्लोक साथ में पढ़ लेता हूं, तीन श्लोक एक साथ में है। सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते अनुगताइव प्रागैव विद्यमान त्वा तेषामिह संभव एवं भावान बुद्ध्यानुम ये लक्षणै गुह्या गुणै सन्नपि हि तद्गुणाग्रह अनावृतत्वात् अरंतरंगते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः। शब्दार्थ यथा जिस तरह इमे भौतिक शक्ति से बनी ये भौतिक सृष्टियां अविकृता छिन्न भिन्न नहीं भावा ऐसी विचारधारा से तथा उसी प्रकार ते बे विकृतैः संपूर्ण भौतिक शक्ति से उत्पन्न इन विभिन्न तत्वों के साथ नानाविर्याः पृथक तत्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है। पृथक विलग भूता होकर विराजम संपूर्ण विश्व को जनयंती उत्पन्न करते हैं ही निसंदेह सन्निपत्य आध्यात्मिक शक्ति का साथ होने से समुत्पाद्य उत्पन्न किए जाने के बाद दृश्यन्ते प्रकट होते हैं अनुगता उसके भीतर प्रविष्ट हुए इव मानो प्राक शुरू से इस जगत के सृष्टि के पूर्व से एव निसंदेह विद्यमानत्वात् भगवान के अस्तित्व के कारण न नहीं तेषां इन भौतिक तत्वों का इह इस जगत में संभव प्रवेश करना संभव हुआ होता एवं इस प्रकार भवान हे प्रभु बुद्धि अनुमेय लक्षण असली बुद्धि से तथा ऐसे लक्षणों से ग्राह्यी इंद्रिय विषय से गुणई गुणों से सन अपि यद्यपि संपर्क में है तद्गुण आग्रह उन गुणों के द्वारा स्पर्श नहीं किए जाते हैं अनावृतत्वात् सर्वत्र उपस्थित होने से बहिरंतरम बाहर और भीतर न ते ऐसी कोई बात नहीं है सर्वस्य हर वस्तु का सर्वात्मनः सभी वस्तुओं के मूल स्वरूप आत्मवस्तुनः हर वस्तु आपकी है किंतु आप हर वस्तु के बाहर तथा भीतर है। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्त्व अभिभाज्य है किंतु भौतिक गुणों के कारण यह पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश में विलग होती सी प्रतीत होती है। यह विलग हुई शक्तियां जीव के कारण मिलकर विराट जगत को दृश्य बनाती है किंतु तथ्य तो यह है कि विराट जगत के सृष्टि के पहले से ही महातत्व विद्यमान रहता है। अतः महातत्व का वास्तव में सृष्टि में प्रवेश नहीं होता है। इसी तरह यद्यपि आप अपनी उपस्थिति के कारण हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य है, किंतु आप न तो हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य हो पाते हैं, न ही हमारे मन या वचन के द्वारा अनुभव किए जाते हैं। अवांक्य मानस गोचर, हम अपनी इंद्रियों से कुछ ही वस्तुएं देख पाते हैं, सारी वस्तुएं नहीं। उदाहरणार्थ हम अपनी आंखों का प्रयोग करके देखने के लिए कर सकते हैं, आस्वाद के लिए नहीं। फलस्वरूप आप इंद्रियों की परे हैं। यद्यपि आप प्रकृति के तीनों गुण से संबंध है, आप उनसे अप्रभावित रहते हैं। आप हर वस्तु के मूल कारण हैं, सर्वव्यापी अविभाज्य परमात्मा है। अतएव आपके लिए कुछ भी बाहरी या भीतरी नहीं है। आपने कभी भी देवकी के गर्भ में प्रवेश नहीं किया, प्रत्युत आप पहले से वहां उपस्थित थे। दोहराएंगे कि बस इतने बड़े अनुवाद हैं, तात्पर्य भगवद गीता के 9:4 में स्वयं भगवान ने यह बात बतलाई है कि मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थित। मेरे अव्यक्त रूप से यह सारा ब्रह्मांड परिव्याप्त है, सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों के माध्यम से नहीं हो पाती। कहा गया है कि भगवान कृष्ण के नाम, जस, लीलाएं इत्यादि भौतिक इंद्रिय द्वारा नहीं जाने जा सकते। जो समुचित निर्देशन के अंतर्गत शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, केवल वही उसका साक्षात्कार कर सकता है। ब्रह्म संहिता की 5:38 में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिसने भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भाव उत्पन्न कर लिया है, वह सदैव भगवान गोविंद को अपने भीतर और बाहर देख सकता है। इस तरह वे सर्वसामान्य को दृष्टिगोचर नहीं होते। अतः भगवद्गीता के श्लोक में यह कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी है, किंतु भौतिक इंद्रियों द्वारा वे विचारणीय नहीं है। यद्यपि हम उन्हें देख नहीं सकते, किंतु वास्तव में सारी वस्तुएं उन्हीं पर टिकी है। जैसा कि भगवद्गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, यह संपूर्ण विराट जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियां परा तथा अपरा, अर्थात आध्यात्मिक तथा भौतिक शक्तियां का मेल है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड के ऊपर फैलता है, उसी तरह भगवान की शक्ति सृष्टि भर में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी है। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वे सर्वव्यापी होने के कारण अपना निजी अस्तित्व को खो चुके हैं। ऐसे तर्कों का खंडन करने के लिए भगवान कहते कि मैं सर्वत्र हूँ और सारी वस्तुएं मुझ में है, फिर भी मैं पृथक हूँ। उदाहरणार्थ राजा सरकार का मुखिया होता है और यह सरकार राजा की शक्ति की अभिव्यक्ति है। सरकार के विभिन्न विभाग राजा की शक्तियाँ होते हैं और हर विभाग राजा की शक्ति पर आश्रित रहता है। इतने पर भी राजा से यह आशा करना है कि वह हर विभाग में व्यक्तिगत रूप में उपस्थित हो सकेगा व्यर्थ है। यह तो भांडा उदाहरण हुआ है। इसी तरह हम जो कुछ भी देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं विद्यमान हैं, चाहे वे इस भौतिक जगत में हो या वैकुंठ लोक में, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित है। भगवान की विभिन्न शक्तियाँ के विसरण से ही सृष्टि बनती है। और जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है कि आपने साकार रूप में सर्वत्र उपस्थित है, जो उनकी विभिन्न शक्तियों का विसरण है। यह तर्क दिया जा सकता है कि जो भगवान केवल अपनी चितवन से सारे ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, वे भला वसुदेव की पत्नी देवकी की गर्भ के भीतर कैसे आ सकते हैं। इस तर्क का खंडन करने के लिए ही वसुदेव ने कहा, हे प्रभु, यह कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है कि आप देवकी की गर्भ के भीतर प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि भी तो इसी तरह बनी रहती है। आप महाविष्णु के रूप में कारणार्णव सागर में लेटे हुए थे और आपके श्वास से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए, तब आप हर ब्रह्मांड के भीतर गर्भदक्षाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। इसके बाद आपने पुनः अपना विस्तार क्षीरदक्षाई विष्णु के रूप में किया और सारे जीवों के हृदय में, यहाँ तक कि हर परमाणु के भीतर में भी प्रविष्ट हो गए। अतः आपका देवकी के गर्भ में प्रवेश इसी तरह समझ में आ जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने प्रवेश किया है, किंतु इसके साथ साथ आप सर्वव्यापी भी बने रहते हैं। हम भौतिक उदाहरण से आपके प्रवेश तथा अप्रवेश का समझ सकते हैं। कुल भौतिक शक्ति महातत्व 16 तत्व से विभाजित होकर भी जैसी की तैसी अक्षय बनी रहती है। यह भौतिक शरीर पांच स्थूल तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश का मेल ही तो है। जब भी कोई भौतिक शरीर उपस्थित होता है तो लगता है कि तत्वों का नए सिरे से सृजन हुआ है, किंतु ये सारे तत्व शरीर के बाहर सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी तरह यद्यपि आप देवकी की गर्भ में शिशु रूप में प्रकट हो रहे हैं, आप बाहर भी विद्यमान हैं। आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, किंतु आप एक ही समय लाखों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। आपके प्राकट्य को काफी बुद्धि लगाकर समझना पड़ता है, क्योंकि आपसे भौतिक शक्ति भी उद्भूत होती रहती है। आप भौतिक शक्ति के उसी प्रकार से मूल स्रोत है जिस तरह सूर्य प्रकाश का स्रोत सूर्य है। न तो सूर्य प्रकाश सूर्य मंडल को आच्छादित कर सकता है, नहीं आपने उद्भूत भौतिक शक्ति आपको आच्छादित कर सकती है। आप भौतिक शक्ति के तीनों गुणों में प्रतीत होते हैं, किंतु ये तीनों गुण आपकी आच्छादित नहीं कर सकते। अत्यंत बुद्धिजीवी दार्शनिक इसे समझते हैं। दूसरे शब्द में, यद्यपि आप भौतिक शक्ति के भीतर प्रतीत होते हैं, किंतु आप इसके द्वारा कभी आच्छादित नहीं होते हैं। वेदों का कथन है कि परम ब्रह्म का अपना तेज प्रकट होता रहता है, जिससे हर वस्तु प्रकाशित होते हैं। ब्रह्म संहिता में हमें पता चलता है कि ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म तेज भगवान के शरीर से उद्भूत होता है। इसी ब्रह्म तेज से सारा सृष्टि उत्पन्न होती है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान ब्रह्म तेज के आश्रय है। मूलतः वे ही सारे वस्तुओं के मूल कारण है, किंतु अल्पज्ञ ये सोचते हैं कि जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तब वे भौतिक गुणों को स्वीकार करते हैं। ऐसा निष्कर्ष परिपक्व नहीं, अपितु ये अल्पज्ञों का निष्कर्ष होता है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीन श्लोक एक साथ में है, 15, 16 और 17 भगवान अंतिम लाइन में इस अनुवाद में कहते, आपने कभी भी देवकी की गर्भ में प्रवेश नहीं किया, प्रत्युत तो आप पहले ही वहां उपस्थित थे, जैसे पिछले श्लोक में भी कहा गया। लेकिन भगवान एक साथ में सर्वत्र विद्यमान हो सकते हैं, भगवान जब ये धरा में अवतीर्ण नहीं हुए तभी वो अपने आध्यात्मिक जगत में भी रहते हैं, कहाँ गोलोक वृंदावन में भी सदा निवास करते हैं, सदा सदा के लिए वहां पर है, इसको क्या कहते हैं, नित्य लीला, भगवान सदा नित्य लीला में रहते हैं अपने धाम में। कभी इस धरा में अवतीर्ण होते इसका मतलब वहां खाली हो जाना क्या, नहीं वहां खाली नहीं होता, वहां वो अपने लीला भी चलते रहता है, इसको कहते नित्य लीला। और यहाँ पर इसी जगत में जो भगवान अवतीर्ण होकर जो लीलाओं करते हैं उसको क्या कहते हैं, भौम लीला है। भगवान की लीला एक साथ अपने नित्य आध्यात्मिक जगत में गोलोक में भी चलते रहता है, वैकुंठ जगत में चलते रहता है, साथ साथ उनकी लीला इस भौतिक जगत में कहीं ना कहीं भी चलते रहता है। क्योंकि भगवान को बद्ध जीवों की प्रति असीम करुणा होने के कारण वो चाहते कि बद्ध जीव भी वापस जाएं, कहाँ आध्यात्मिक जगत में हैं, इनको वापस लेने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, आकर आपकी लीलाओं को विस्तार करते। यदि वो भगवान के आविर्भाव के कारण ये भी कहा गया कि परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे, भगवान अवतीर्ण होते हैं लेकिन विशेष रूप में साधु संतों को आश्वासन देना इनके मुख्य कारण है अवतीर्ण का, और गौण कारण है राक्षस बादुष्टों को विनाश करना। लेकिन भगवान इसलिए धरा पर आते हैं, लेकिन तीसरे कारण भी ये है कि भगवान बद्ध जीवों को भी उद्धार करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आकर लीलाओं को विस्तार करते हैं। जैसे नरोत्तमदास ने भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सो पार्षद शिवधाम सह अवतरी, जीवों को विशेष दया करने के लिए भगवान अपने धाम तथा परिकरों के साथ ये धरा पर अवतीर्ण होते हैं, आकर हमें सिखाते हैं कैसे भगवत धाम जाना है, बाप उनका आकर्षण करने के लिए अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं, तो लीलाओं को देखकर हम आकर्षित होते हैं। भगवान कहते हैं जब तुम भी ऐसे ही करोगे तो तुम्हें ऐसे ही फल मिलेगा, पूरा ड्रामा पार्टी वहीं से लेके आते हैं, कहाँ से, नित्य धाम से। अपने ड्रामा में भगवान जो लीला करते हैं उसमें कोई बद्ध जीव शामिल नहीं हो सकता है, ये नित्य परिकर ही के साथ ही भगवान आते हैं, वो बद्ध जीव नहीं, जो ड्रामा करना जानता नहीं तो उसको शामिल कैसे कराएंगे। इसलिए प्रकृति में कौन हीरो बनेगा, कौन विलियन बनेगा, कौन क्या करेगा, वो सब पूरा पहले डिसाइडेड है, हैं, इसलिए भगवान आते हैं नित्य परिकर को, चाहे वो हिरण्यकशिपु होने पर भी वो बद्ध जीव थोड़ी है, वो भी मुक्त आत्मा है, हिरण्यकशिपु में नृसिंह अवतार में नृसिंहदेव भी हैं, वो भी एक जैसे हम यहाँ पढ़ रहे कि काल बता दें कि भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या किए थे, कौन कौन, सुतपा नहीं सॉरी पृष्णी, सुतपा पृष्णी, ये तपस्या किए कितने साल, 10,000 साल है देवताओं की गणना में, केवल सूखे पत्ता और सूखा घास खाकर तपस्या किए थे, उससे प्रसन्न हुए भगवान ने, प्रसन्न होकर उनको जब उपस्थित हुए कहे कि क्या चाहिए मांगो, तो मांगो तो क्या मांगे, आपकी जैसे पुत्र चाहिए, भगवान मेरा जैसे कोई होता नहीं है, असम ऊर्ध असमर्ध, समान में भी कोई नहीं होता, ऊर्ध में कोई नहीं होता, अब मेरा समान पुत्र आपको क्या, अर्थात आप मुझे ही पुत्र रूपे चाहते हो। चलिए भगवान ने उस समय स्वीकार किए थे कि मैं आपके 3 बार पुत्र बन के आऊंगा, हैं, अभी पृष्णी गर्भ के रूप में आपकी पुत्र बनूंगा, सत्वा पृष्णी पृष्णी गर्भ है, फिर दोबारा कैसे वामन देव के रूप में जो अदिति और कश्यप के पुत्र रूप में आएंगे, कहे आप ही वही सत्वा पृष्णी और कश्यप अदिति अभी किस रूप में आए हो, वसुदेव देवकी के रूप में, चाहे तीसरी बार आपके पुत्र के रूप में, भगवान कहेंगे आगे वो अपने इसको व्यक्त भी करेंगे, हैं, तीसरी बार कृष्ण रूप में आए हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे वर्णन दिखाई देता है कि कि इन्होंने देवता लोग ने भी स्तुति करने लगे, महादेव की गर्भ में ये प्रवेश किए हैं। लेकिन पिछले श्लोक कहते हैं प्रवेश भी किए हैं, प्रवेश नहीं भी किए हैं, है? जो जैसा सोचता है ऐसा ही है, भगवान का जो यथामन प्रपद्यंत तंत्र, जो जैसा सोचता है सही सही है। आप सोचते कि हाँ प्रवेश किया वो भी सही है, आप कहें नहीं प्रवेश नहीं किया तो भी सही है। इसलिए कहते कि ही अप्रविष्ट प्रविष्ट ही वो है, प्रविष्ट प्रवेश भी किए नहीं भी किए, जैसे आपको लगता है। कुछ लोग सोचते हैं हाँ प्रवेश किया, नहीं तो हम देवता लोग स्तुति किया सो वर्णन है अच्छा से है ठीक है, कोई सोचते वसुदेव सोचते कि नहीं प्रवेश किया नहीं, जो जैसा सोचता है ऐसा ही ठीक है। इसको कहते अचिंत्य भेद अभेद, तो इसको ठीक से समझना। नृसिंहदेव को भी एक पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट किया था, कौन नृसिंह चतुर्दशी अभी आने जो आएगा। नृसिंह चतुर्दशी किस लिए हम पालन करते हैं, क्या है उस दिन क्या है नृसिंहदेव का प्राकट्य, कहाँ प्रकट हुए है? उस दिन प्रकट नहीं हुए, कम से उस दिन प्रकट नहीं हुए कि पद्म पुराण में वर्णन आता कि वो भी वरदान लिया था 12 महीने में, किसी महीने में नहीं मरेगा है। इसको भी ये वरदान था कि 12 महीने कि 12 महीने में किसी महीना में नहीं मरेगा, 6 ऋतु में नहीं मरेगा, सारे मांग लिया था वो बहुत वो। तो इसलिए पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णन आता है कि हरित मुनि और लीलावती ये दोनों कठोर तपस्या करके ही नृसिंहदेव को पुत्र रूप में चाहते थे। श्री नृसिंहदेव उनके सामने प्रकट होकर जब प्रकट हुए, इनकी तपस्या प्रसन्न होकर कहे कि ठीक है लेकिन माता मैं तुम्हारे गर्भ में प्रवेश नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे सामने ही मेरे बाल रूप में प्रकट हो जाता हूँ, बाल नृसिंह रूप में, और आप मुझे जैसे तुम्हारी इच्छा है लालन पालन करने की वात्सल्य में आप मुझे ऐसे ही लालन पालन कर सकते हो। सो वहाँ पर लिखा गया कि तो ये वो दिन है नृसिंह चतुर्दशी, जिस दिन भगवान नृसिंहदेव ने हरित मुनि और लीलावती के पुत्र के रूप में उनके सामने प्रकट हुए थे। लीलावती ने उनमें गोद में लेकर बैठी है, जो बाल नृसिंह को हरित मुनि और लीलावती की गोद में बैठे हुए दर्शन करता है तो उसके समस्त प्रकार की बाधा विघ्न नष्ट होने के साथ साथ भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त हो जाता है, ऐसा वर्णन आता है। लेकिन कभी कभी भगवान इसलिए नृसिंहदेव के रूप में जो उनकी पुत्र बने गर्भ में नहीं प्रवेश किए हैं, नहीं कहे कि नहीं है, वो अजोनी संभूता है, उनको कहाँ से गर्भ में कैसे, मैं पुत्र के रूप में तुम्हारे सामने ही बस बन जाता हूँ बाल रूप धारण करके है। लेकिन यहाँ पर जैसे वर्णन आता कि ये कोई आम सोचते हैं कि नहीं भगवान ने प्रवेश किया देव के गर्भ में, इसलिए श्लोक में यहाँ पर उदाहरण दी जा कैसे दी गई ना, जैसे ये भौतिक ब्रह्मांड को भी हम देखते हैं हम सोचते कि महातत्व से सारी सृष्टि कैसे हुआ, महातत्व से सृष्टि हुई है, सांख्य दर्शन के अनुजाई 16 तत्व में महातत्व बना हुआ, बा ऐसे दाम कहते 24 तत्व आगे और भूमि रप नल वायु खं मनो बुद्धि ये 8 तत्व हो गए, और 5 इंद्रियों की विषय वस्तु 10 हो गए, और कर्मेंद्रिय अच्छा 5-10 इंद्रिय कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय ये 10-15 हो गए, ये 23 हो गए, तो ये 23 ऐसा ही काउंट करने से होता है। लेकिन कहते कि महातत्व जो है ये तो सृष्टि के प्रारंभ से ही था, कारणान्न और सागर में महातत्व की स्थिति है एक कोने में, महातत्व के पहले और कुछ था, महातत्व के पहले क्या था है? प्रधान है, प्रधान सुप्त अवस्था में रहता है, उसके ऐसे निर्जीव से प्रतीत होता है एक साथ में एक कोने में, ये जो 23 तत्व में बना हुआ प्रधान एक साथ रहता है, लेकिन इसके ऊपर ईक्षण करते हैं कौन, महाविष्णु भगवान डायरेक्ट ईक्षण नहीं करते हैं है? उनकी विस्तार है, महाविष्णु की भी उपादान कारण निमित्त कारण दो होता है, तो महाविष्णु ही स्वयं को विस्तारित करके ही इसकी परीक्षण करते हैं। जो संभूतामपि जो संभूतामपि समुपैति कार्यम है, कहते ना यथा खिरंग यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तत पृथक अस्ति हेतु, जो संभूतामपि तथा समुपैति कार्यम गोविंदम आदि पुरुषम तमहंग भजामि। भौतिक प्रकृति के साथ डायरेक्ट संजोग भगवान विष्णु नहीं करते हैं, लेकिन उनकी विस्तार कौन शंभु है, वो इनके निक्षेप दृष्टि निक्षेप करने से उत्तेजित हो जाता है। कौन प्रधान उत्तेजित हो जाता तो उसको कहते, उसी को कहते महातत्व। लेकिन जब सृष्टि नहीं था तब यहाँ पर उदाहरण देते कि महातत्व की स्थिति था है, और हम सोचते कि महातत्व महातत्व सब में प्रवेश किया, सारे सृष्टि कैसे हुआ ना, उसमें से महातत्व जो 23 तत्व के सम्मिश्रण से सृष्टि हुआ। लेकिन ये उदाहरण दिया जाते कि नहीं, ऐसा नहीं है। सृष्टि होने के बाद भी महातत्व अपने जगह पर है, कहाँ कारण न उषा करें तब भी महातत्व उधर है। भगवान इस जगत में अवतीर्ण होने के पहले से भी भगवान अपने धाम पर स्थित है। मायावादी सोचते कि भगवान जब सृष्टि करते सारे करने के बाद तो उनकी शक्ति फिर ह्रास हो जाता है, वो पूरे शून्य हो जाते, ऐसा नहीं है। भगवान सर्वत्र विद्यमान रहने पर भी, सर्वत्र इनकी स्थिति होने पर भी, फिर भी वो अपने स्वधाम में स्वयं रूप में एक व्यक्ति के रूप में वहाँ सदापनि लीला में रहते हैं, नित्य लीला रहते हैं। इसलिए भगवान की जो लीलाओं को समझना आसान नहीं है, प्रभुपाद जी कहते केवल वही समझ सकता है जिसको भगवान में प्रेम है। इसलिए ब्रह्मचर्यता की 538 कोट करते हैं कि प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय सुविलोकयंती यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। केवल शुष्क ज्ञान के माध्यम से शास्त्र पढ़कर ये मैंने चर्चा करते करते उनको समझना कठिन है, भगवान को हम नहीं समझ सकते। वरं बुद्धिमत्ता की परिचय ये होगा कि यदि हम भगवान को प्रेम करना सीखें, यदि भक्ति की आंख में प्रेम की काजल लगाएंगे तभी भगवान को हम ठीक ठीक से देख सकते। भगवान यदि चाहेंगे तो अभी सभी रहस्य हमको प्रकट हो सकता है, भगवान नहीं चाहने से हम इनको समझना कठिन है, इनको नहीं समझ सकते। अपने इंद्रियों के माध्यम से इनको नहीं समझा जाता है। तो श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय, इंद्रियों के माध्यम से जो अधक्षज है, जो इंद्रियों की परे हैं, तो उनकी कैसे समझोगे, ये संभव नहीं है। इसलिए यदि भगवान प्रकृति में समझना चाहते हो तो भगवान की भक्ति करना सीखो। भक्तिया मांग अभिजान, केवल भक्त ही भगवान को समझ सकता है, दूसरे नहीं समझ सकता। कोई तार्किक कोई ज्ञानी जोगी कर्मी आध्यात्मवादी जैसे होते, कर्मी ज्ञानी जोगी और भक्त, इनमें से कौन भगवान को समझ सकता है, केवल भक्त ही समझ सकता है। वसुदेव कौन थे, कर्मी ज्ञानी जोगी भक्त, क्या कौन थे, भक्त है। इसलिए भगवान की असली रहस्य इनको पता चलता है, वो अपने अनुभूति से कुछ बोल रहे हैं। जैसे प्रभुपाद ने पिछले तात्पर्य लिखे थे कि वसुदेव जैसे व्यक्ति से हमको ज्ञान लेना चाहिए, जिन्होंने परम सत्य को साक्षात्कार किया है, जो परम सत्य के रहस्य को जानता है, ऐसे व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो इसलिए जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे भगवान को समझना संभव नहीं है। हमें तर्क वितर्क करके ही जितने भी पंडित बनने जितने आए, ज्ञान के छः और जो छः विभाग से एक विभाग केवल वेदांत व भक्ति है, और पांच विभाग का सहायता लेने से पर भी हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं, ठीक ठीक से नहीं समझेंगे जब तक भक्ति सम्मिलित नहीं होता है। कि भगवान कहते भक्ति आमांग अभी जानती, केवल भक्त ही मुझे पहचान सकता है, भक्त ही सर्वत्र भगवान की स्थिति को देखता है, कहीं भी भगवान की स्थिति को देखता है। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्मृति, सर्वत्र भगवान को देखता है। भगवान को सर्वत्र देखने पर भी वो भगवान को अपने धाम में भी देखता है, कहाँ नित्य गोलोक में भी भगवान की स्थिति को वो समझ पाता है। इसलिए भगवान ऐसे नहीं कि इस संसार में जो आते हैं लीला में आते हैं तो उनके आध्यात्मिक जगत में लीला समाप्त हो जाए, वहाँ खाली हो जाते, ऐसा नहीं है। भगवान दोनों साथ में रहते हैं, भौमलीला में भी रहते हैं और नित्य लीला में भी रहते हैं। लेकिन भौमलीला एक ब्रह्मांड से फिर दूसरे ब्रह्मांड में ट्रांसफर, जैसे ड्रामापटी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है, ऐसा ही ये ट्रांसफर करते रहते हैं। पार्टी बनकर आया प्रकृत नृत्य नाटिका करने के लिए, लेकिन वो एक के बाद एक पृथ्वी में भौतिक ब्रह्मांड जितने भी ब्रह्मांड सब में भ्रमण करते रहते हैं। अभी कुछ साल पहले, कितने 5000 साल पहले यहीं इसी ब्रह्मांड इसी पृथ्वीलोक में उनकी लड़ाई चलता था, है, लेकिन अभी और कहीं चल रहा है, और कहीं चल रहा है। प्रभुपाद जी कहते कि जो साधक है, जो बद्ध जीव है, ये बद्ध जीव प्रकृति में है, डायरेक्ट नित्य लड़ा में प्रवेश करना संभव नहीं होता है, डायरेक्ट बद्ध जीव, यदि वो नित्य सिद्ध पारिषद तो वहीं से आए हो जाएंगे, प्रभुपाद जी जैसे जो नित्य परिकर है उनको वहां से वहां जाएंगे, लेकिन बद्ध जीव को संपूर्ण शुद्ध हुए बिना भगवद्धाम में प्रवेश करना संभव नहीं होता है, भगवान के रहस्य को समझना संभव नहीं है। इसलिए हमें ये ड्रामा पार्टी में है, ड्रामा देखकर थोड़ा सा अनुभव भी होना चाहिए। इसलिए कहते पहले जब बद्ध जीव चाहे कृष्ण भक्ति करके कृष्ण स्मरण करके शरीर त्याग आए, लेकिन फिर उसको ये ड्रामा पार्टी में शामिल कर किया जाता है, भौमलीला में, भौमलीला में जब प्रवेश करके फिर ये भगवान की जो भौतिक जगत में जो लड़ा चल रहा उसमें प्रवेश करके ही फिर जो एक्टिंग कर रहे हैं नित्य सिद्धा गोपियों की है, सब गर्भ से प्रवेश करके फिर जन्म लेता है तो उसके भाव अभिमान आ जाता है, फिर उसके नित्य अपने स्वरूप का अभिमान होता है, वो जब पहचानता मैं कौन हूँ है, तो ये अभिमान जब तक हमारे पास नहीं आएगा, जब तक हमारा चिंतन माया में रहेगा, जब तक हम सोचते रहे कि मैं शरीर हूँ है, तब तक हमारे शरीर ज्ञान तो हम कहाँ से भक्ति कर पाएंगे, भगवत धाम जाने में योग्य नहीं बन सकते। इसलिए पहले बुद्ध जीव को भौमलीला, फिर भौमलीला के बाद नित्य लीला प्रवेश करता है। इसलिए भगवान के रहस्य को वसुदेव जी कहते कि वसुदेव जी की स्तुति है, वसुदेव कहते कि इसको भक्त ही केवल समझ पाता है प्रभु, और वो स्वयं ये उदाहरण दिए कि जैसे महातत्व का महातत्व अपने स्थिति पर रहने पर भी महातत्व सारे उसी से बाह्य रूप से हम सोचते कि महातत्व से ही सब कुछ सृष्टि हुआ, महातत्व से जो सोल तत्व बातें ते तत्व थे उसी से सब सृष्टि हुआ है, लेकिन ये सृष्टि होता तो फिर महातत्व घटा नहीं, लेकिन महातत्व जैसे ही ऐसा ही आज भी है कहाँ करणानवसागर में, लेकिन उससे ये सब सृष्टि संपन्न हो गया। उसी प्रकार भगवान अपने स्थिति पर रहने पर भी यदि वो सभी कारण के कारण वही है, उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी भगवान अपने स्थिति पर सदा रहते हैं, अपने नित्य लीला में भी सदा नित्य धाम में भी विराजमान करते हैं, साथ साथ इसी भौतिक जगत में भी अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए जो जैसे चाहता है उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ऐसे लीला के द्वारा भी लीलाओं को प्रकट करते हैं, लेकिन जो जैसा सोचता है वो ऐसा ही देखता है, एक ही कृष्ण है, लेकिन कृष्ण को कई प्रकार के लोग चिंतन कर सकते हैं। जब कंस के रंगभूमि में भगवान कृष्ण बलराम प्रवेश कर रहे थे सभी एक जैसे देखते थे कृष्ण को, नहीं है, कंस कैसा देखता था, साक्षात काल के रूप में देखता था, मरल लोग ले कैसे देखते हैं, मरल जो थे कंस चाणूर ये सब भगवान को देखते थे, देखते इनके शरीर जैसे लोहा से भी अधिक कठिन है इनको दिखाई पड़ता था, तो जोगी लोग थे वो उनको परमात्मा के रूप में देखते थे, सोचते परमात्मा, क्योंकि परमात्मावादी है, भगवान को हृदय में ध्यान करते, उन्हें परमात्मा रूप में देखते थे। वहां ग्वाल बाल सो गए थे वो भी थे, कृष्ण बलराम के साथ चलते थे, वो कैसे देखते थे, वो तो बस हमारा मित्र है, अपने सखा के साधारण बस अपना सखा के रूप में देख रहे थे। उनके जो वसुदेव देव के उनके जो माता पिता थे वो वात्सल्य में क्या देखते थे, हमारा नन्हा का नन्हे से लाला है, और उनको लगता कि मेरे हमारे बच्चे के जो शरीर है एकदम माखन से भी अधिक क्या मुलायम है, और ये जो खड़े हैं मल्ल इनके साथ में ये कैसा युद्ध करेंगे, वो बड़े वात्सल्य में भर कर रोना शुरू कर देते, ऐसे कंस का कैसे बुद्धि है, जितनी प्रकार के सब लोग थे, मथुरा की वासी कैसे देख रहे थे, उनके जदुवंशी इनको अपने इष्ट के रूप में देख रहे थे, एक ही कृष्ण है, लेकिन व्यक्ति की अपना अपना मूड है, अलग अलग रूप में इनको देख रहे थे। कृष्ण सभी की इच्छा पूर्ण करते, एक ही कृष्ण है, लेकिन इनको कोई दास्य रस में, कोई साख्य रस में, कोई वात्सल्य में, कोई माधुर्य में उनके साथ संपर्क रखना चाहता है, वह कोई कोई नास्तिक है तो क्या करता है, उनको साधारण समझता है। भगवान से कहते अवजानती मांग मुढ़ा मानुसिंह तनुमाश्रितम परंग भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम, जो मूर्ख लोक है, मूढ़ प्रकृति के लोक है, मैं साक्षात परमेश्वर होने पर भी वो मुझे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मूढ़ है, मूर्ख है। अब जब मूढ़ा है मानुष सिंह, साधारण मनुष्य की तरफ भगवान स्वयं रूप में प्रकट होते, लेकिन इनको ये साधारण मनुष्य समझते हैं। अपने नित्य धाम में भी भगवान ऐसे ही रूप में रहते, मानो है भगवान के स्वरूप जो है द्विभुज है, मुरलीधर है, ऐसे आप मनुष्य के स्वरूप है, है? कि भी अन्य धर्मशास्त्र से भी, बाइबल से भी कहा गया भगवान के स्वरूप मनुष्याकृति है, मनुष्य जैसे हैं, लेकिन वंशी धारण करते हैं। तो लेकिन जब भी उन्होंने कृष्ण के रूप में बा कभी राम के रूप में धरा पर आ जाते हैं लीला के लिए, तो लोग साधारण को शिक्षा देने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए कृष्ण आए, भगवद गीता भी बताए तो हमको अभी भी ज्ञान प्राप्त होता है, कृष्ण आए मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श राजा, आदर्श पिता, आदर्श मैंने सभी आदर्श मर्यादा को कैसे के साथ कैसे ही अपना कर्तव्य को निभाना सिखाए, आचरण करके भगवान ने लीला सिखाए, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण है। इसलिए भगवान जब अवतरित होते हैं साधारण मूढ़ लोग उनको समझ नहीं पाते हैं, उनको साधारण मनुष्य समझते हैं, सोचते हैं नहीं नहीं वो माँ के गर्भ में प्रवेश किया है, किसके गर्भ में, देव की गर्भ में प्रवेश न करेंगे कैसे जन्म होगा। लेकिन वसुदेव कहते कि नहीं हो, कुछ भी कर सकते हैं, प्रवेश कर भी सकते, नहीं भी कर सकते हैं। ये अनुवाद लास्ट में भी, आपने कभी भी देवकी गर्भ में प्रवेश नहीं किया, प्रत्युत तो आप पहले से ही वहां उपस्थित थे। विविधैव श्रूयते हैं परस्य शक्ति, विविधैव श्रूयते, सर्वत्र भगवान की शक्ति सर्वत्र है। प्रभुपाद जी कहते कि भगवान की दो ही शक्ति में सब कुछ चलता है, आध्यात्मिक जगत में इनकी आध्यात्मिक अंतरंग शक्ति और भौतिक जगत बहिरंग शक्ति के द्वारा परिचालित तो होता है। और जो विशेष रूप में महात्मा लोग होते हैं, महात्मा नंगस्तु पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता भजन्ति अनन्यमानस ज्ञानत्वामाम भूतादिम अव्ययम, जो भक्त लोग है भगवान की अंतरंग शक्ति की आश्रय करके रहते हैं, दैवी प्रकृति इसको कहते हैं। और जो अभक्त लोग है वो भगवान की बहिरंग शक्ति इनको कबलित करके रखता है। इसलिए जो बहिरंग शक्ति के द्वारा कबलित रहते कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उनकी मति भ्रमित रहता है, इसलिए भगवान की जन्म कर्म के रहस्य को समझ नहीं सकते हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यंग, इनके दिव्य जन्म कर्म को तो केवल भक्त ही समझ सकता है। एवं जब व्यक्ति तत्वता, इसको तत्व से भक्त ही केवल समझ सकता है। जैसे वसुदेव जैसे भक्त हैं वो समझ सकते हैं कैसे भगवान की लीलाएं, कैसे क्या होता है, भगवान भगवान की लीला इनको छुपता नहीं है, किससे, भक्तों को नहीं छुपता है, लेकिन अभक्तों से कभी भी प्रतीत नहीं होते हैं भगवान है? इसलिए प्रभुपाद जी कहते प्रेमांजन छुरित है, आंख से प्रेम की भक्ति की आंख में प्रेम की काजल लगाकर जब देखोगे तो भी आपको पता लगेगा भगवान कैसे हैं, कैसे वो नित्य धाम में रहते हैं, कैसे अवतरित होते हैं, लीलाओं की कैसे प्रकट करते हैं। वसुदेव और देवकी की केवल इच्छा था कि उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करना, लेकिन उनको लालन पालन करने की भावना उनके पास नहीं था, इसलिए वो दूसरे जगह चले गए। कहाँ जन्म हुए वसुदेव के पुत्र के, वसुदेव के पुत्र के रूप में चले गए, कहाँ नंद भवन में चले गए, कि वो जानते कि इनकी इच्छा है मुझे लाल लड़ाना, मुझे पालन करना वात्सल्य रस में, भगवान वहां पहुंच गए जसुदार नंद के घर में है, वहां पहुंच गए, वहां पहुंचकर उनको माता पिता रूप में फिर स्वीकार किए। यहाँ के माता पिता इधर थे, फिर वहाँ दूसरे माता पिता आ गए, उनके पास जाकर फिर अपने बाल्य लड़ा को नंद भवन में नंद उत्सव वहाँ मनाया है, वहाँ उनका बाल्य जन्म का उत्सव वहाँ मनाया गया। इसलिए भगवान की लीलाओं को समझना इतने आसान नहीं है, लेकिन वसुदेव ये रहस्य भी जानते थे, जानते थे कि नहीं, जानते थे कि ये मेरा ही पुत्र है, अभी देवकी की पुत्र के रूप में जन्म ली है, बाद में वो नंद की महल में जो वो उत्सव मना रहे हैं, नंद उत्सव मना जा रहे हैं, जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भय जय कन्हैया लाल की, तो वो रहस्य भी इनको पता था, किसको, वसुदेव को, कि वो स्वयं लेके छोड़ के आए हैं, वो स्वयं लेके ही इनको वहां छोड़ के आए थे, इनको पता है, भक्त का सभी जानता है, वो सभी रहस्य उसको पता रहता है। विशेष रूप में वसुदेव जो थे ये दोनों पर इसके भगवान के प्रति स्नेह भी था, साथ साथ ये ऐश्वर्य युक्त भी थे, ये भगवान के ऐश्वर्य को भी जानते थे, ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्य। लेकिन नंद जसोदा के पास में ऐश्वर्य का स्थान नहीं था, विशुद्ध वात्सल्य। वो कृष्ण को कभी भी भगवान ने मानेंगे नहीं, ये लेकिन ये तो मान गए, ये माने। कंस का वध करने बाद भगवान जब गए देवकी वसुदेव खड़े हुए, वो माँ पिताजी पिताजी के आलिंगन करने भाग रहे हैं कृष्ण बलराम, लेकिन ये खंभे की तरफ खड़े हैं, नहीं जानते कि ये कौन है, भगवान है, सभी कारण के कारण है, अशेष कोटि ब्रह्मांड के नायक, इनको देखे थे शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए हैं। तो इसलिए वो उस रस को आस्वादन नहीं कर पाए, जो रस को कौन आस्वादन करता था, नंदर जसोदा है। नंदर जसोदा किसी समय में भगवान चाहे गर्गमुनि को बल दिए कि ये कौन है, भगवान है, ये से बहु कहरे पर भी वो चिंतन हमेशा उनके पास नहीं रहता है, कभी नहीं, नहीं नहीं ये कैसा है, अरे तुम भगवान बोल रहे जो गोवर्धन धारण करने लगे, भगवान गोवर्धन धारण किए, गोवर्धन धारण बाप में सारे ब्रजवासी लोग आ गए, आके कहे कि नंद बाबा है सच बोलाओ, ये तुम्हारे जो लाला है कृष्ण के बारे में सच सच बताओ, ये आपका लड़का है कि और कहीं से आया है, सच बताओ, क्योंकि तुम दोनों तो है गोरे हो और ये काला बना है। नंद बाबा भी जसोदा गोरी है थोड़ा सा, लेकिन इतनी काला नहीं थी जैसे कृष्ण जैसे थे, तो ये आपके पुत्र कैसे बोले काला बनते हैं, बलराम भी चिल्लाते थे इनको, क्या है तू इनका लड़का नहीं है, तुझे कहीं था रास्ता में पड़ा था, कहीं पेड़ का नीचे कहीं छोड़ के चला गया था, ये उठा के ले आए हैं, तू इनके पत्र बलराम भी कभी चिल्लाते थे, दाऊजी मतलब खिंचाती है मुझे, मजाक करते हैं, जसोदा कहते थे कृष्ण। तो जसोदा इसीलिए नंद भवन में जाओगे तो नंदगांव में देखोगे जो दोनों काले हैं, जसोदा ने क्या कृष्ण भी काला है और बलराम भी काले हैं, क्योंकि माँ जसोदा कहे कि झगड़ मत, दोनों ही काले बन जाओ, बस दोनों ही काले हो, दोनों ही बांसुरी पकड़ लो, कि बलराम चिंत थे इसकी बांसुरी कन्या को, बोले दोनों ही बांसुरी पकड़े, कृष्ण भी बांसुरी बलराम भी बांसुरी है। तो भगवान इसलिए धरा पर जो प्रकट होते हैं वो एक ही अपने प्राकट्य के माध्यम से कितनी भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हैं, केवल वसुदेव हैं, लेकिन वसुदेव रहस्य को जानते हैं, कि ज्ञान होने के कारण इनको ये रहस्य पता है कि अभी देवकी और देवकी को अपने माँ बनाए, मुझे पिता बनाकर जन्म लिए, लेकिन बाद में जाकर वहां भी नंद बाबा को भी पिता बना लिए हैं, नंद जसोदा के माता पिता फिर बना लिए हैं, ये रहस्य को जानते हैं। लेकिन प्रकृति में इस जब तक हम विशुद्ध भक्ति ये इस प्रकार ज्ञान से भी परे हैं, इस प्रकृति में भगवान को प्यार करना चाहता है, आज इसको जब तक उसको ज्ञान रहेगा कि ये भगवान है, वो केवल शांतरस में ही भक्ति करेगा, शांतरस के भक्त ही शांत और दास्य, शांत और दास्य रस के जो भक्त हैं वो इस रूप में भक्ति कर सकते हैं, जो हम जानते कि स्वयं भगवान है इसलिए हम उनके दास है, और उनके गुणगान करने वाले शांत रस वाले केवल उनकी महिमा को जानते हैं और उसी की महिमा को स्तुति रूप में गाते रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल सेवा करने के लिए कोई इच्छा नहीं होता है। प्रैक्टिकल सेवा करने की किसको इच्छा होता है, दास्य भक्त हैं, हनुमान जैसे रक्तक चित्रक पत्रक कृष्ण के दास थे, दास के रूप में नंद भवन में सेवा करते थे, दास्य रस से ही सेवा प्रारंभ होती है। और आगे यदि सखा वात्सल्य और माधुर्य रस में कोई सेवा करना चाहता है तो उसको ये ज्ञान से भी रहित होना पड़ेगा, नहीं तो एक यदि सब समय सोचे ये भगवान है और उनके कान में चढ़ सकता है, नहीं है, तुम्ही कौन हो बड़ो लोग, तुम्ही आमी समा वाल वाल लोग कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते कि जो ब्रह्मा जी क्या देख रहे थे ग्वाल वालों के बीच में बैठकर कृष्ण किस प्रकार भोजन लीला कर रहे हैं जमुना किनारे हैं, तो ब्रह्मा जी कहते कृत है कृत पुण्य पुंजा, कितनी पुण्य, ये कई जन्म जन्मांतर से संग्रह करके आए हैं, कारण आज बैठे हुए हैं कृष्ण के साथ बैठकर ये भोजन लीला कर रहे हैं, ये तो पुण्य पुंजा, हाँ कितनी पुण्य किए हुए, कौन सा पुण्य, कर्मकांड की पुण्य है, सुकृति तीन प्रकार की होती है, कर्मनमुखी ज्ञानमुखी और भक्तिन मुख्य सुकृति है। ये कौन सा सुकृति की है? भक्तिन मुख्य सुकृति, कई जन्म से हैं, कई जन्म जन्मांतर से भगवान की भक्तिन मुख्य सुकृति, उनके व्रत को धारण करके रखे, एकादशी आदि है, एकादशी जन्माष्टमी आदि व्रत को धारण कर करके कितनी पुण्य संचय किए हैं। क्योंकि जितनी भी भगवान की लीला में आते, कुछ तो अपने धाम से ही आते हैं नित्य परिकर, और कुछ लोग यहीं से चुने जाते हैं, कुछ साधन नित्य सिद्ध होते हैं और कुछ साधन सिद्ध भी होते हैं। तो इसलिए वसुदेव की कहना है कि हे प्रभु, आप इसी प्रकार देवकी के गर्भ में हैं, प्रवेश किए भी है, बाहर रूप से लोग देख समझते हैं, हमें देख हमको पता लगता है, सभी देवता लोग सभी को ज्ञान है, आप प्रवेश किए, वो लोग आके स्तुति भी किया है आपको, हैं स्तुति भी किए हैं, सभी जानते हैं कि आप देवकी के पुत्र बने, देवकी के गर्भ में प्रवेश किए हैं। लेकिन असलियत यह है, तो आप तो सर्वत्र ही विद्यमान रहते, जो देवकी गर्भ में आप प्रवेश नहीं किए तब भी थे, हैं कि आप सर्वत्र है रहते देवकी गर्भ में, जब देवकी में प्रवेश नहीं किए तब भी थे देवकी गर्भ में, और बाहर में भी थे, अंतर बहिर अवस्थित, बाहर में भी अंदर में आप कहीं भी अपने प्रकार अपने स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आपको केवल देवकी की गर्भ से ही प्रकट हो सकते, और कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इच्छा था, हम तपस्या करके इच्छा प्रकट किए थे कि पुत्र रूप में प्राप्त करना, इसलिए भगवान ने ऐसे ही लीला स्वरूप इसको निभाया। लेकिन ये जो देवकी गर्भ में प्रवेश कर गए, तो इसका मतलब वो खाली हो गया ना, क्या गोलोक में खाली हो गया? नहीं, गोलोक में भी भगवान अपनी स्थिति पर रहे। जैसे महातत्व कर्णार्णव सागर में स्थित होने पर भी सारे सृष्टि महातत्व से ही होता, बोले कहते हैं महातत्व से ही सृष्टि हुआ, लेकिन फिर भी महातत्व अपने जगह पर रहता है, वो कर्णार्णव सागर में रहता है। ऐसे ही आप अपने धाम में सदा विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है, साथ साथ भी लीला के लिए, भक्त इच्छा को पूर्ण करने के लिए, भगवान की सारे लीलाएं भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए होता है। इसलिए उन्होंने ऐसे ही लीला की है केवल कि देवकी गर्भ में प्रवेश किए। लेकिन इस लीला को देखकर, देवकी गर्भ से जो जन्म लिए भगवान, देखकर भी वसुदेव कह रहे कि नहीं है आप प्रवेश, सभी लोग सोच रहे प्रवेश किए, लेकिन आप प्रकृति में प्रवेश भी नहीं भी किए, किए भी और नहीं भी किए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण महाराज। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका लीला में 16108 रानियों का जो है, तो उसमें आठ तो हम लोग समझते हैं कि आठ जो महारानी थी, जिनको जैसे कि रुक्मणी आदि जो थे, सत्यभामा आदि, और प्लस जो 16100 है, क्या ये बद्ध जीव के रूप में मिलेंगे और वो नित्य सिद्ध है, कैसा स्वीकार करेंगे?
सभी नित्य सिद्ध नहीं है, कुछ लोग अपने तपस्या अपने पुण्य से ही तो स्थिति को प्राप्त करते हैं। जो अष्टरानी थे मुख्य रूप में, जैसे आप कह रहे हैं, कुछ लोग उस नित्य द्वारका से भी पधारते हैं, आगे आध्यात्मिक जगत में भी मथुरा, द्वारका और वृंदावन, तीनों जगह में भगवान की लीला चलता है। वहां पर भगवान नित्य जगत में भगवान एक साथ में तीनों जगह में रहते हैं, एक साथ में कृष्ण को मथुरा में भी देखा जा सकता है, द्वारका में भी देखा जा सकता है, और वृंदावन में भी उनके दर्शन होता है। लेकिन भगवान जो इसी भौतिक जगत में भौम लीला में आते हैं, वे एक साथ में तीनों जगह में नहीं दर्शन किया जा सकता है। जो वृंदावन में रहते तो फिर मथुरावासी उनको नहीं देखते, वह द्वारका में रहते तो मथुरा वृंदावनवासी नहीं देखते हैं। लेकिन जो मथुरा में वो ऐश्वर्य मैंने द्वारका में, जब वो द्वारकाधीश के रूप में प्रकट हुए हैं, तो उनके 16108 रानियां जब थे, उनमें सभी लोग हैं, विशेष में 16000 कन्याओं को जो उन्होंने उद्धार किए, किससे? भौमासुर या नरकासुर से उनको वध करके जो उद्धार किए, ये सब अपने साधन से ही हैं भगवान को प्राप्त किए। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ हाँ, प्रश्नी गर्भ में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रश्नी गर्भ के रूप में भगवान के क्या लीला है, जब सुतपा प्रश्नी के रूप में आए, ये ही ध्रुव महाराज को वरदान देने के लिए उनके सामने प्रकट हुए थे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी की शिक्षा में, सनातन गोस्वामी, ये प्रश्नी गर्भ जो है, ये प्रश्नी गर्भ ही ध्रुव महाराज के तपस्या में प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए थे, उनको वरदान दिए थे। ठीक है। और कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा महाराज, आपने बताया कि ये जो ना हिरण्यकश्यप का वध किया नरसिंह भगवान ने, तो 12 महीने में किसी भी दिन नहीं किया था, तो कौन सा दिन में?
अधिक मास,
अधिक मास
है, पद्म पुराण के आधार पर अधिक मास में मारे भगवान ने इसको, 12 महीने में नहीं मरेगा है, इसलिए अधिक मास जो आता है उसी महीना में भगवान ने मारा थे इसको है। तो लेकिन आम से नृसिंह चतुर्दशी कि व्रत इसलिए अनादिकाल से है, जब हिरण्यकश्यप को नहीं मारे थे तो उसका पहले भी नृसिंह व्रत है, चतुर्दशी व्रत चलता था। ये प्रहलाद को गोद में लेते हुए नृसिंहदेव कहते हैं कि तुम, प्रहलाद पूछते कि हे भगवान, मैं आपकी इतनी शुद्ध भक्त कैसे बना, इतनी हिरण्यकश्यप जैसे व्यक्ति का मैं पुत्र बना, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति कैसे किया राक्षस कुल में जन्म होकर है। तो भगवान नृसिंहदेव फिर कहते कि तुम पूर्व जन्मों में ये ब्राह्मण के पुत्र था, तुम्हारे नाम वासुदेव था, तो मैं ब्राह्मण का 7 पुत्र में से तो सबसे छोटा पुत्र था, बेचिया संगी था और शराब पीने वाला, सभी प्रकार के कुकर्म करता था, लेकिन अज्ञान से तुझे मेरी व्रत के पालन हो गया था, नृसिंह चतुर्दशी की व्रत पालन कर लिया था। एक नृसिंह चतुर्दशी वो बड़ा कहानी है, सारे में नहीं कर रहा हूँ क्लास में, कि घर से पिताजी देखा एक दिन वो वासुदेव ने बेश्या के हाथ पकड़ के शराब पीते हुए चलता घर में आया, तो उसके सारे भाई और बाप मिलके इसको गेट आउट कर दिए घर से, ये घर में तेरा कोई अधिकार नहीं, भाग यहाँ से है। तो इसलिए दुखी होकर जंगल में घूमते घूमते हैं, रो रहा था, बेश्या लोग देखे पैसा नहीं, वो लोग कमरे भगा दिया, जंगल में अकेला घूम रहा था, दिन भर भूखा, कुछ खाया नहीं, शाम के समय हुआ तो देखा कि झरना मिला उधर, तो झरना में स्नान कर लिया, स्नान करके ही सब बाजू में पीपल की वृक्ष था वहां बैठ के दुख के कारण थोड़ा भगवान को स्मरण किया। दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे ना, दुख जो था बड़ा देखा कि सभी लोग रिजेक्ट कर दिया, अभी क्या करें, भगवान को थोड़ा स्मरण किया है। भगवान कहे कि उस दिन ये महान व्रत था, वो दिन कौन सा दिन था, नृसिंह चतुर्दशी की व्रत का दिन था, इसीलिए तुझे अज्ञात सुकृति मिल गया, ये भक्तिमुखी सुकृति के बल पर तुझे नारद जैसे संतों की संग प्राप्त हुआ है। भक्ति भक्त संग ने उपजा जाते हैं, लेकिन सत्संग प्राप्यते, सत्संग कैसे प्राप्त होना, इसमें अज्ञात सुकृति होने से। इसलिए कहे कि तू पूर्व जन्मों में मेरी नृसिंह चतुर्दशी व्रत धारण करने के कारण तुझे अज्ञात सुकृति हो गया है, और उसी अज्ञात सुकृति के बल पर तुझे नारद जैसे महान संत के संग प्राप्त हुआ, तो नारद जी की कृपा से तू फिर मेरी इतनी महान भक्त बन गया है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।